السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم انشاء اللہ تعالیٰ سورة الجاثیہ کریں گے. من ورائهم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، یعنی یہ جس راستے پہ جا رہے ہیں آگے جہنم ہے ان کے لیے، اور پیچھے بھی کے لیے بھی ورا آتا ہے، ورے، تو پیچھے جہنم ہے، یعنی جہنم ان کا تعاقب کر رہی ہے، ان کے پیچھے ہے. اللہ تعالیٰ تو احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ محیط بالکافرین، یہ بچ کے کہاں جائیں گے؟ اس لیے یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں جہنم سے بے خبر، یہاں پہ ہنسی اڑانے لگے ہوئے، لیکن جہنم ان کی تاک میں، ان کے لیے تیار ہے. تب کیا ہوگا؟ الا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، ان کو نئی کام آئے گی جو بھی انہوں نے کمایا، یعنی اس دنیا میں جتنا کچھ بھی کما لیا، یہ نہیں کہ نیکیاں، نیکیاں نہیں یہاں پہ مراد ہے، جتنا کچھ بھی کمایا، بڑی شہرت کما لی، میرے بڑے فالوئنگ ہے، میرے بڑی آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، میری بڑی پوزیشن ہے، بڑا مقام ہے، بڑی جائیدادیں ہیں، بڑے بینک بیلنس ہیں، بڑی ڈگریاں ہیں میرے پاس، بڑی جاب ہے میرے پاس، کچھ بھی ان کو کام نہیں آئے گا. ان کے یہ اعمال، ان کی یہ کمائی ان کا بچا نہیں سکے گی، اور نہ کون بچا سکے گا. یہاں تو انسان کو ان چیزوں کے اوپر بڑا ہی مان ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے، مجھے کون سا کچھ پرابلم ہے، اور دوسرا اس کو اپنے کانٹیکسٹ پہ بڑا ہوتا ہے. تو وہ بھی کہا گیا ولا، اور نہ متخذو من دون اللہ اولیاء، جن کو اس نے اپنا مددگار بنایا ہوا تھا اللہ کے سوا، یعنی بڑے پروٹیکٹر ہیں میرے، میرے بڑے سپورٹرز ہیں میرے، اولیاء میں سارے آتے ہیں، سرپرست، مددگار، دوست، یہ بھی کام نہ آئیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو دیکھیں عذابٌ علیم بھی کہا گیا، عذابٌ مہین بھی کہا گیا، عذابٌ عظیم بھی کہا گیا ان کے لیے. کتنا اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ایسے لوگوں کے پر. وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کی آیات کے آگے تکبر کرنے والے، اصرار کرنے والے. اب ان کو پتا چل گیا پھر بھی اڑے میں، بس میں نہ مانوں، میں نے نہیں مان کے دینا. کچھ نہ کچھ تو ریزن ہوگا نا ان کے پاس، کچھ تو کہتے ہوں گے، وہ سوائے تکبر کے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالی کی آیات کو، جو حق ہیں، سچائی ہے ان کے اندر، ان باتوں کو انہوں نے مذاق کا نشانہ بنایا نا. یہ سمجھتے ہیں نڈر ہیں، سمجھتے ہیں بہت بڑا کچھ ہے ہمارے پاس، کچھ نہیں ہوتا ہمیں، نہیں، ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے. اللہ اکبر. ھذا ھدن، یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت کا پیغام ہے. قرآن جو ہے نا، یہ سراسر رہنمائی ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد یعنی کیا ہے، ہدایت دینا. یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے، بہت سیریس چیز ہے. آج کل تو ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہم سپیکر بھی اس کو سننا چاہتے ہیں جو مذاق کرے، اتنا مذاق کا فیشن ہو گیا، یعنی جو سٹیج پہ ہنسائے نا کھڑا ہو کے، ہنسانا ضروری ہے، کوئی لطیفے، کوئی چٹکلے بھی چھوڑتا جائے تو پھر ہمارا دل بڑا لگتا ہے، لیکن کوئی ہدایت کی بات کرے، سیریس ہو، تو سیریس ہونا ہی نہیں چاہتے، کہتے کوئی فانی نہیں. اچھا مذاق کہاں پہ آتا ہے، جہاں پہ وہ مذاق کر کر کے کچھ بتا رہے ہیں، بڑے لائٹ موڈ میں، انہیں سکولرز کو سننے کی بھی لوگ زیادہ چاہت رکھتے ہیں. کوئی فن تو ہونا چاہیے نا بیچ میں. एंटरटेनमेंट के इतने आदी हो गए कि यानी वो भी ऐसे है जैसे कोई हम कोई एंटरटेनमेंट लेने जा रहे हैं, हिदायत के लिए नहीं जाते, एंटरटेनमेंट के लिए। चलो थोड़ा हंसी लेंगे दीन के नाम पे, तो ये कोई हंसी मजाक की चीज नहीं है, बहुत सीरियस काम है। हिदायत है, गाइडेंस। गाइडेंस किस लिए ली जाती है? ताकि आप उस रास्ते के ऊपर चलें जो सीधा है। आप गाइड लेते हैं ना कोई, आप किसी मुल्क में गए हैं, किसी शहर में गए, आप वहां पे गाइड हायर करते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें इस शहर का नहीं पता, तो ये गाइड हमें ले लेके जाएगा, फिर आएगा, घुमाएगा। इस दुनिया में भी इंसान को खुद नहीं पता कैसे चलना है, क्या रास्ता सीधा है, तो अल्लाह ताला ने उसकी हिदायत का इंतजाम कर दिया, उसके लिए गाइड बना के भेज दिए कुरान। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि मैं तो खुद ही इतनी माहिर हूं, मुझे गाइड की जरूरत ही नहीं, फिर क्या होगा उनका हाल, जो इससे गाइडेंस लेना ही नहीं चाहते। तो सोचे फिर कि वो किधर जाके एंड अप होंगे। तो इसका मकसद तो हिदायत लेना है। और क्या आप ऐसा गाइड कभी हायर करते हैं तो जो फ्रेंच बोल रहा हो, आपको फ्रेंच आती ना हो? आप वही गाइड हायर करते हैं जिसकी आपको समझ आ सके। इस कुरान को भी समझना जरूरी है, तभी इससे हिदायत का काम लिया जा सकता है। अगर इसकी समझ ना आई तो हिदायत तो नहीं मिल सकती। हाँ, सवाब जरूर मिल जाएगा, आप पढ़ते रहें, लेकिन असल इसका मकसद कहीं पूरे कुरान में ये मकसद बयान नहीं किया गया कि इसका मकसद यह है कि आप इससे सवाब लें। हाँ, आपके लिए अजर का बायस है, जाहिर है, इस पे अमल करेंगे अजर मिलेगा, इसका एक एक हर्फ पढ़ेंगे तो अजर मिलेगा, लेकिन इसका मकसद नहीं ये बयान किया गया कि इसका मकसद है कि आपको बस सवाब ज्यादा ज्यादा मिल जाए। उसके लिए तो फिर कोई एक ही सुभान अल्लाह भी काफी थी, अल्हम्दुलिल्लाह भी काफी थी, उससे भी तो अजर मिलता है ना। अल्लाह अकबर कह लेते उससे भी अजर मिलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते उससे भी अजर मिलता है। अल्लाह ताला को इस कुरान को नाजिल करना, इतने साल इसमें लगे, कितना इसके लिए तमाम किया गया, शैतानों को पीछे किया गया, बड़ी हिफाजत से इसको दुनिया पे उतारा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितना मुश्किल था इसको लेना, ये कौलन सकीला इसको कहा गया, भारी कलाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेते हुए क्या हालत हो जाती थी, ये इतनी सारी चीजों से गुजरने की क्या जरूरत थी अगर आपको इसकी जरूरत ही नहीं थी। आप खुद ही अपनी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजार सकते हैं इसके बगैर, तो फिर जरूरत क्या थी इतने तमाम की? कई कई सूरतों के साथ इतने फरिश्ते उतरे जो उन सूरतों को लेके उतर रहे थे, जैसे सूरह अनाम है, कितने फरिश्ते उसके साथ उतरे, कितना प्रोटोकॉल अल्लाह ताला ने दिया, लोहे महफूज से आसमाने दुनिया पे उतारा, आसमाने दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता करके उतारा। भाई खुद बताइए इसका क्या जरूरत थी फिर, अगर मैं और आप इसके बगैर ही अच्छे थे, और हम समझते हैं इसके बगैर ही हमारी जिंदगी कंप्लीट है, और ये और आके क्या इजाफा करेगा, कुछ सोचे तो सही। ये इतना इतमाम करना, फिर सीना बसीना, आगे से आगे ये मुंतकिल होना, फिर अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमा रहा है कयामत तक के लिए। वो हिफाजत कोई कीमती चीज की जाती है? ये इतना कीमती अल्लाह का कलाम है, उसकी इजाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने ले लिया, इसकी भी क्या जरूरत थी अगर हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, अगर इसकी कोई ऐसी हमारे एहतियाज नहीं है, हम कोई मोहताज नहीं है इसको, इससे गाइडेंस लेने की, तो क्या जरूरत थी? इसका जवाब बताए ना। हम तो ये समझते हैं हम इसके बगैर भी काफी है। कितने लोग हैं मुझे बताएं, अपने आप को हम मुसलमान भी कहते हैं, कितने ही लोग हैं जो कब्रों तक पहुंच गए लेकिन इससे हिदायत लेना गवारा नहीं किया, कितने ही लोग हैं बस ऐसे ही। ये तो फालतू ही चीज है, और आज हम भी अंधे बने पड़े, उतनी अहमियत नहीं देते इसको, वरना सीने से लगा के रखते। इसके साथ गुजरने वाला हर लम्हा हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशकिस्मती का लम्हा लगता, कि ये तो मेरी खुश नसीबी हो गई जो इसके साथ ये वक्त गुजर गया, लेकिन नहीं ऐसा होता। ना हमने इसको हिदायत समझा, ना इसको अपने लिए इम्पोर्टेंट समझा, ना इसके तरफ आने को हमने कोई अहमियत दी, ना इसके साथ वक्त गुजारने को हमने कुछ अहम जाना, बायसे खैर जाना। वल्लज़ीना कफरू बि आयाति रब्बिहिम लहुम अज़ाबुम मिन रिज़्ज़िन अलीम। ये हिदायत है। और वो लोग जिन्होंने इनकार किया आयात का अपने रब की, जो आयात का इनकार करते रहे, कभी मजाक उड़ा के, कभी इसको हकीर समझ के, कभी इसको गैर अहम समझ के, ये तो हिदायत है, ये तो रहनुमाई है, लेकिन उन्होंने इसको कुछ भी नहीं समझा, इसका इनकार ही कर दिया। उनके लिए अजाब है मेरे रिजिन अलीम, उन अजाबों में से अजाब है जो बड़े दर्दनाक हैं, जो बड़े कपकपा देने वाले दर्दनाक किस्म के, अलमनाक किस्म के अजाब है, उससे उनको दो चार होना पड़ेगा। तो जो अल्लाह की नसीहत से मुंह मोड़ता है और उसको अपने लिए अहम नहीं जानता और उसको पसे पुश्त डाल देता है, फिर ऐसे बनी इसराइल का भी आप अंजाम देख ले। अल्लाह ताला ने उनसे गिला किया, उनका गिला इस कुरान में है कि उन्होंने पसे पुश्त डाल दिया अल्लाह के कलाम को, ऐसे जैसे वो उसको जानते ही नहीं थे। और आज हमारा भी कुछ यही हाल है, हमने पसे पुश डाल दिया, वैसे उसकी तरफ पीठ ना करें बेशक, लेकिन पसे पुश डाल दिया इस तरह से कि उसकी तरफ देखना ही गवारा नहीं है। और बहुत कमाल कर देते हैं हम, जबकि हम एक दफा पढ़ के उसकी पार्टी कर लेते हैं, बच्चों की भी पार्टी कर देते हैं, खत्म हो गया इसका कुरान, जैसे बड़ा हमने कारनामा कर दिया, बहुत सर से उतार दिया, पार्टी हो गई खत्मे कुरान की, और बस दैट्स इट, अब बंद हो गया। ये बंद होने के लिए तो ना आया था। और जो एक दफा कोर्स कर ले उनका तो माशाल्लाह क्या ही कहने हैं, वो तो समझते हैं अब हम क्या बड़ी चीज बन गए, अब वापिस इसकी तरफ आने की क्या जरूरत है, बस पढ़ लिया ना एक दफा कुरान, इतनी अहमियत थी। इसीलिए फिर ऐसे लोगों की जो कुफर करते हैं इसका, जो कि ईमान नहीं लाते इसके ऊपर, जो इससे हिदायत का सामान नहीं लेते, उनके लिए देखें कितना ही बड़े अजाब की वईद दी गई यहाँ पे। तो चौथी दफा मुसलसल कुराने करीम के साथ जो लोगों का रवैया है ना, उसके ऊपर अजाब की वईद आई। कहीं है अजाब मुहीन, अजाब अलीम, अजाब अजीम, कहीं अजाब में रिज्जन अलीम। और फिर कितनी और हमें बात समझ आएगी, कौन सी बात हमें बताएगी कि ये कुरान अहम है, और किस तरह हमें समझ में आएगा, इन आयात को पढ़ के भी नहीं समझ आता, इसका मकसद क्या, मेरा इसके साथ रवैया क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको छोड़ के जिंदगी गुजारती हूं तो क्या है, अगर मैं इसको अहमियत नहीं देती तो फिर क्या होगा। बार बार अजाब की बात भी हमें नहीं जगाती, अजाब का सबब क्या है। आप पीएचडी कर लेते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं आप, बड़े साइंसदान हैं आप, और बस अपने आप को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि बस अब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। हमें क्या जरूरत है, हम तो पहले ही बहुत बड़े पढ़े लिखे और इतने समझदार हैं, हम इंटेलेक्चुअल्स हैं। सोचें फिर, जो अपनी समझ अपनी अकल को सबसे बड़ी चीज समझ ले, क्या ये तकब्बुर नहीं है इस कुरान के मुकाबले में। तो इसमें मैसेज है हम सबके लिए, हमने जुबानों से इसके ऊपर ईमान का इकरार किया है, लेकिन हमारी जिंदगी में एक रमक भी नजर नहीं आती कि जो हम इस कुरान को कोई अहमियत दे रहे हैं। और हमारी जिंदगी में सबसे पहले जो चीज हमारे हाथ से जाती है वो ये कुरान है। सब काम चल रहे होंगे लेकिन ये कुरान ही है जिसको ही पीछे कर रहे हैं, क्योंकि सबसे फालतू यही था ना शायद जिंदगी में, एक्स्ट्रा चीज थी ना, एक्स्ट्रा चीज को हम पीछे कर देते हैं। देखिए हम अपने आम जिंदगी में भी, जब हम बहुत मसरूफ हो जाते हैं तो जो कोई एक्स्ट्रा चीज होती है उसको हम कहते हैं चलो इसको तो बाद की बात है, बाकी जरूरी जरूरी काम कर ले, ये तो एक्स्ट्रा ही है। आप देख लें, अभी मुझे एक जीपीएल ने बताया कि लोग चले जाते हैं वेकेशन पे और दो दो तीन तीन महीने वेकेशन पे रहते हैं और फिर ना क्लास लेते हैं ना ग्रुप्स अटेंड करते हैं। क्यों? 3 महीने वेकेशन पे हम जब गए तो सारी चीजें तो हमारी चल रही थी, बल्कि शॉपिंग जरा ज्यादा ही हो जाती है और सैर तफरी भी ज्यादा हो जाती, लेकिन कुरान ही फालतू था जिसको छोड़ दिया। चलो माना कोई हफ्ते के लिए गया था, कोई 4 दिन के लिए गया था, वो एक अलग समझ आती है बात। तो दो दो तीन तीन महीने जाके बैठे हुए कहीं और फिर बस कुरान को छोड़ दिया, ये नहीं हम कर सकते। तो हम सब एक दफा जायजा लें हमारी जिंदगियों में कुरान की क्या अहमियत है, कितनी हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, कितना हम इसको सीने से लगाते हैं, क्या हमारे रवैये हैं इसके साथ। चाहे हम इसको पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, क्यों पढ़ और सीख रहे हैं, क्या चाहते हैं इससे, हिदायत ही चाहते हैं या सर्टिफिकेट चाहते हैं, हाईएस्ट मार्क्स चाहते हैं या जन्नत की तरफ का रास्ता पाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। इसको पढ़ने के बाद हम सुनी अनसुनी कर देते हैं, बंद किया कुरान और उठ के चल पड़े, या वो बातें हमारे दिल को लग जाती हैं, दिल में बैठ जाती हैं, दिल में जगह बना लेती हैं। हम कुराने पाक को सुनने के बाद अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं या नहीं, अपनी अक्ल को एक तरफ रखते हैं कि नहीं, हमारे क्या रवैये हैं, पढ़ने के बाद क्या है, जो नहीं पढ़ते उनका भी हाल पता है, और जो पढ़ रहे हैं वो भी देख लें अपने आप को इन आयात के आईने में। उन्हीं की बात आ रही है कि जो सुन के अनसुनी कर देते जैसे कभी सुना ही नहीं, ऐसे जो कुराने करीम के तालिबे इल्म अपने आप को कहलाएं, फिर जब आप उनको कहीं बाहर देखें तो आप परेशान हो जाएं कि कभी इन्होंने कुरान पढ़ा भी है, ये वही लोग हैं क्या। आप उनके रवैये देखें, उनके मामलात देखें, उनके हाल हुलिये देखें, उनके शादी ब्याह देखें तो परेशानी हो जाए, कभी इन्होंने सुना था या ऐसा लगता है कभी सुना ही नहीं। उनके सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस देखें, कोई फर्क नहीं लग रहा कि इसने पढ़ा और जिसने नहीं पढ़ा, तो जिसने पढ़ा है फिर उसका पढ़ना भी ना पढ़ने वाले के बराबर ही हुआ ना, वो ना सुनने वाले के बराबर हुआ ना। तो फिर यही मिसाल है जो ये पहली आयत के अंदर आई कि जो लोग नंबर 8 आयत के अंदर कि जो लोग सुन के इनके सामने तिलावत की जाती है फिर भी वैसे के वैसे ही। तो ये आयतें अपने सामने रखें और इनको आईना समझे, मैं इनमें अपने आप को देखूं, अपना जायजा लूं और फिर हम खुद फैसला करूं कुरान करीम के साथ मेरा क्या रवैया है। क्योंकि जब हम एक कोई क्लास में एज अ स्टूडेंट रजिस्टर कर लेते हैं ना, हम समझते हैं बस सारा दीन हमने, बस अब 3 में हम तो कामिल हो गए, हमने तो सब कुछ कर लिया, अब तो हम बिल्कुल मुकम्मल है, अब तो कुछ रह ही नहीं गया करने को, बस बहुत बड़े हमने कारनामे सर अंजाम दे दिए, ग्रेजुएट भी कर लिया तो उससे भी बड़े कहीं पेडिस्टल पे अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। लेकिन ये आयात हमें आईना दिखा रही है, ये तो हिदायत का पैगाम है, हिदायत भी ली थी इससे या सिर्फ याद ही की है तर्जुमे। हिदायत का पैगाम भी समझा था इसको। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुल्लज़ी सख़र लकुमुल बहरा, अल्लाह ताला वो जात है जिसने मुसख़र कर दिया। मुसख़र करना क्या होता है, पहले भी मैंने आपको बताया, मुसख़र करना होता है मुती कर देना, आसान कर देना, खिदमत में लगा देना, कंट्रोल में दे देना, ये सारे इसके माने। तो समुंदर हमारे कंट्रोल में तो नहीं, लेकिन मतलब यानी क्या है यहाँ पे कि हमारी खिदमत में लगा दिए, अल्लाह ताला ने समुंदरों को खिदमत में लगा दिया, लितजरी अल्फुल्क फीही भी अमरी, अके चले कश्तियां उसके हुक्म से, और किस लिए इनको खिदमत में लगाया, वली तबतगू मिन फजली, और ताकि तुम तलाश करो उसके फजल में से, यानी आप उसमें से रोजी वगैरह तिजारत वगैरह अपनी करो, इधर से उधर चीजें जा रही हैं, बल्कि अब तो जहाज आए, उससे पहले तो जब जहाज नहीं थे तो आज तक इंसानियत किससे जाती थी, कश्तियों से ही तो जाती थी, नूह अलैहि सलाम के जमाने से तो कश्तियां ही चल रही, कहीं इधर से उधर जाना होता था कि कैसे लोग शिप्स के अंदर जाते थे, हज वगैरह पे भी बताते हैं लोग कि 6-6 महीने लग जाते थे शिप्स के अंदर जाया करते थे। तो इस तरह से फासले तय होते थे, और आज भी जहाजों में तो इंसान ही जाते हैं, ज्यादा कार्गो तो कम ही होते हैं जहाज। सारा आपका कार्गो, जितनी आपकी ट्रेडिंग इस दुनिया में इस वक्त चल रही है ना, वो सारी शिप से होती है। इवन जब ये कोविड आया तो आपको पता है कि कई ये जो मुल्क हैं जहां से बहुत सामान आता है, जैसे चाइना वगैरह, वहां पे चूंकि ज्यादा था और ये शिप्स के ऊपर लोडिंग होती थी, और ये सब जब बंद हुआ तो चीजें आनी बंद हो गई, शेल्फ्स खाली होने शुरू हो गए। अब देखिए, अगर ये समुद्रों का ये निजाम ना हो, ये जो अल्लाह ताला ने रखा है कि आप अपनी ट्रेडिंग के लिए कश्तियां चला सकते हैं, शिप्स चल सकते हैं, अगर ये ना होता, अल्लाह ताला ने इस समंदर को, इस पानी को, इस लॉ में ना बांधा होता, तो ये तो इतना दियो हैकल है, इधर तो वो निकल जाता है, ये तो बड़े बड़े जहाजों को निकल जाता है। अल्लाह ताला ये निशानियां भी दिखाता है, ना चल सकते जहाज आप कैसे चीजें लाते, कैसे सफर करते, सारी दुनिया की इंडस्ट्री बंद हो जाती। आप सोचें जरा थोड़ी देर के लिए, आपको एक झलक सिर्फ कोविड में नजर आई है, तो कैसे अगर जहाज नहीं चल रहे थे तो कैसे हमारे पास आम चीजें जो हम कुछ भी नहीं समझते वो गायब हो गई, पता चला आ ही नहीं रहे। तो अगर अल्लाह ताला ऐसा समुद्रों को बना देता, जैसे आप देखें ना, पानी तो नरम है ना, आप पानी में उंगली डालें आपकी पानी में उंगली चली जाएगी, यानी ऐसा नहीं है कि कोई सख्त चीज है जिसके ऊपर इतने भारी जहाज चल रहे हैं। इतना नरम है पानी, तो नरम है, नाजुक है, लेकिन उसके ऊपर इतने भारी जहाज चलते जा रहे हैं, अंदर गर्क नहीं हो रहे, डूब नहीं रहे, सोचते नहीं है ये अल्लाह ताला ने इस समंदर को खिदमत में लगाया है तो चल रहे हैं। हम कभी ना कभी किसी फेरी में, क्रूज में, कई लोग अपने जॉब्स के लिए जाते हैं बोट्स या फेरीज के अंदर जाते हैं, कभी सोचते नहीं है इनको ये चल रहा है कैसे, इस नरमो नाजुक पानी के ऊपर अल्लाह ताला इसको चला रहा है। ये तुम अल्लाह का फजल तलाश करो, इसमें कोई हरज नहीं है, तुम्हारी कश्तियां इसमें चलें अल्लाह के हुक्म से, तुम चलाओ कोई हरज नहीं, लेकिन ये इसलिए है कि लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। तुम्हें अल्लाह ताला रोकता नहीं है, तिजारत करने से नहीं रोका गया, बल्कि कहा गया कि तुम तलाश करो अल्लाह का फजल, ये कोई बुरी बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, मुबाह चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई, इंसानों के लिए बनाई, लकुम तुम्हारे लिए, तो इसको भी गलत समझना ये भी इसके खिलाफ है। अल्लाह ताला ने ये बनाई है आपके लिए, अल्लाह ताला ने जैसे जो हलाल जानवर है इनको खाना तुम्हारे लिए बनाया कि तुम इनको खा सकते हो, कोई इसमें गुनाह नहीं है। कुछ लोग इसको गुनाह समझ लेते हैं, आप इतना जुल्म करते हैं जानवरों के ऊपर, कई लोग इसको बुरा समझ लेंगे, ये तिजारत करना, ये करना, हमें बस अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, ये कमाइयां और ये करनी, ये तो बस दुनिया में पड़ गए। नहीं, अल्लाह ताला कहता है मेरा फसल तलाश करो, कश्तियां चल रही हैं, जाए अल्लाह की कुदरतों को देखिए, लेकिन ये साथ फरमाए शुक्र अदा करो। और शुक्र मैंने कितनी दफा आपको बताया, शुक्र तभी है जब इंसान इस चीज को समझे दिल से कि अल्लाह तेरा कितना करम है, ये तेरा ही फजल है, और फिर जुबान से भी शुक्र के कलिमात को अदा करे, और फिर इस चीज को समझे और अपने जवारे से भी, अपने अमल से भी इंसान दिखाए कि मैं कितना शुक्र गुजार हूं, अल्लाह मैं तेरे आगे झुका हूं, तूने मुझे ये सब कुछ दिया है। जब दिल के अंदर शुक्र गुजारी आती है तो जरूर इंसान झुकता है, देखें याद रखें, इंसान की फितरत के अंदर है, वो अपने मोहसिन के सामने झुकता है, जहां से उसको लगता है कि मुझे यहाँ से फायदा मिलता है, यहाँ से मुझे कोई बड़ी नेमतें मिल रही हैं, बड़ी अच्छी चीजें मिल रही हैं, उसके आगे वो झुकना शुरू कर देते। अब जो समझते हैं कि ये पीर बाबा हमें देता है, वो उसके आगे जाके झुक जाते हैं, इसीलिए तो झुकते हैं ना, जो समझते हैं ये कब्र वाले हमें देते हैं, फिर वो उसके आगे झुक जाते हैं, जो समझते हैं वो कोई और हमें देता है, फिर वो उसके आगे झुकते हैं, कोई बादशाह यहाँ पे या कोई हुक्मरान दे रहा है, फिर उसके आगे देख के कैसे हाथ बांध के खड़े हो।